जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय श्री राधा राधानाथ भगवान की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताई गौर प्रेमानंदे ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ? या इसका भाव क्या है? ये मंत्र हम हर एक प्रवचन के पहले बोलते हैं. इसका भाव यह है, अर्थ तो यह है कि नमो मतलब मैं वासुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ, वो तो अर्थ है. भाव यह है उसका कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये उसका भाव है. इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी हमको दिया है, जो भी उनका मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसके अंदर जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, कुछ बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर वापस झुक जाते हैं, वो हर एक वस्तु महत्वपूर्ण है. यहाँ तक कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है. भक्ति के 64 अंग, 64 आइटम है उसके अंदर. उसमें सबसे प्रधान आइटम कौन सा है? हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भक्त समझता है या भक्त बनना चाहता है, उसे इस प्रश्न का उत्तर पता होना ही चाहिए कि भक्ति के 64 अंगों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है. भगवान के नाम का जप. और कौन से महत्वपूर्ण अंग है? भक्तों का संग. उसके बाद में धाम, धाम का निवास. उसके बाद में श्रीमद् भागवत का पठन, यानी भगवत कथा, हरि कथा, हरि लीला, भगवान के विषय में चर्चा, शास्त्रों का अध्ययन, इन शॉर्ट. और क्या बचा? तुलसी का, तुलसी की सेवा. और इतना सुंदर आपने भगवान को सजाए रखा है, उसको क्या कहते हैं? अर्च विग्रह पूजा पद्धति, हाँ, डीटी वर्शिप. तो ये 6 जो है वो 64 में से बहुत महत्वपूर्ण है. और प्रभुपाद जी का मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आप अटेंड करेंगे तो इसमें से 42 जो मुद्दे हैं, 42 आइटम हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं प्रसाद तक. हाँ, प्रसाद गिन के. इस तरह से प्रभुपाद जी ने सुबह का कार्यक्रम बनाया है कि मंगलारती से लेकर प्रसाद तक आपके 42 अंग भक्ति के अपने आप पूर्ण हो जाते हैं. केवल बैठना है बस आपको. हाँ, जैसे ट्रेन में कैसे एक अंगूठा भी ट्रेन के अंदर होगा और हाथ में एक बंबू होगा तो भी आप ट्रेन के अंदर हो, उतना रहेगा तो भी आप पहुंच जाएंगे पालघर. वैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं टैग अलोंग, मतलब अगर आप साथ में भी लटक रहे हैं फिर भी आपके अपने आप 42 अंग जो है वो पूर्ण हो जाएंगे. इसलिए आचार्य यानी कि जो अपने उदाहरण से लोगों को शिक्षा देते हैं, ऐसे आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना बहुत शक्तिशाली होता है. क्योंकि आचार्य जो है वो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर उनके ही प्रेरणा से हमको मार्गदर्शन करते हैं.
और वो मार्गदर्शन भगवान की प्रेरणा से होने के कारण साक्षात उनका पालन करने से हमें भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। अल्टीमेटली हमारे बस में कुछ नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर है, अमितो कंगला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाछे पाछे, हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से कंगाल हैं, हमारे पास ऐसा कोई आध्यात्मिक धन नहीं है या बल नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रभावित कर सकते हैं या भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास नहीं है कुछ, तो हम केवल कृपा ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृपा ही प्राप्त कर सकते हैं और कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। हमारी साधना इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो साधना के बल पर हम भगवान को अपने ऊपर प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए कृपा प्राप्त करनी है तो आचार्यों का आदेश पालन करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे कहा गया है कि जब मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उसके लिए भगवान कहीं ना कहीं गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे ही जैसे जन्म लेता है तो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं ना, गर्भ से ही करते कि नहीं ऑटोमेटिक खाने की व्यवस्था, वो गर्भ में जो जीव है वो 9 to 5 जॉब करता है क्या, उसको जन्म मतलब जब से गर्भ में प्रवेश करता है तब से उसके खाने पीने का इंतजाम है, बाहर आने के बाद भी खाने पीने का इंतजाम है, और उसके 18-20 साल होने के बाद में वो कुछ खुद का कमाने की योग्यता रखता है, तब तक तो वो उसको किसी के ऊपर निर्भर रह के करना पड़ता है ना। उसी तरह से जैसे ही हम जीव अनंत जन्म मृत्यु की श्रृंखला से घूम घूम कर जब मनुष्य बनता है तो उसके लिए भगवान आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो उस गुरु को जाके ढूंढे, उससे संपर्क करें, उससे शरणागति ले लें, फिर भगवान ने जो उनके पास पहुँचने की व्यवस्था की है वो सफल हो जाएगी। लेकिन जब तक अगर मनुष्य जीवन में भी आकर अगर हम गुरु नहीं करते हैं, नहीं प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य जीवन द्विपद पशु, दोनों दो पैर के पशु जैसा ही हो जाता है। मनुष्य जन्म को अगर मनुष्य जन्म कहलाना है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए और उसमें श्री गुरु का अंतर्भाव होना चाहिए, अदरवाइज हमारा मनुष्य जीवन जो है व्यर्थ है। और गुरु प्राप्त होने के बाद भी एक बहुत जरूरी अंग है उसका, सतत गुरु के आज्ञा के पालन के कार्य में व्यस्त रहना, यानी कि गुरु के संपर्क में रहना। मतलब क्या होता है, गुरु यहाँ नहीं है अभी, गुरु अमेरिका में है शायद, इंग्लैंड में है या और कहीं देश में प्रचार कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं है, तो सतत गुरु के संपर्क में कैसे रह सकते हम, उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज्ञा का पालन करते हुए हम सतत उनके संपर्क में रह सकते हैं। सतत मतलब बीच में खंड नहीं, अखंड उनके संग में रह सकते हैं, क्योंकि शरीर का संग को वापू कहते हैं और आज्ञा पालन करने को वाणी संग कहते हैं। तो वाणी संग हमको 24 घंटे 12 महीने जीवन भर प्राप्त हो सकता है जब तक हम उनके दिए हुए आज्ञा का पालन नियमित रूप से कर रहे हैं। वो जीवन सच्चा जीवन है, सत्य रूप में अगर आपका जीवन जीवन कहलाने लायक है तो वो तभी है जब आपके जीवन में गुरु है और आपके जीवन में गुरु की आज्ञा है और आप आज्ञा के पालन में रत हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये काउंसलिंग ग्रुप मेंटी ग्रुप ये केवल दीक्षा प्राप्त करने के लिए है, वो दीक्षा हो गई प्राप्त मतलब हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजी में दीक्षा को एक सुंदर शब्द कहा गया है, क्या कहा गया उसको, इनिशिएशन, उसका मतलब क्या, प्रारंभ। हम लोग केवल प्रारंभ करने के लिए इतना तैयारी कर रहे हैं ताकि हम प्रारंभ कर सके, तो जब दीक्षा होती है तो भक्ति के जीवन का प्रारंभ होता है, उसके लिए उसके पहले जो हो रहा है वो केवल प्रारंभ की तैयारी हो रही है। जैसे प्रीलिम होता है ना, एग्जाम के पहले होते हैं प्रीलिम एग्जाम, हम लोग प्रीलिम की भी तैयारी करते हैं उसके बाद में फिर फाइनल एग्जाम देते हैं। तो दीक्षा ये हमारी भक्तिपूर्ण जीवन का एक केवल शुरुआत है और लोग उसी को अंत समझते हैं, हो गया दीक्षा, अभी नाम हो गया और क्या चाहिए, अभी काउंसलर को मिलने की जरूरत नहीं है, उसके आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं है, मीटिंग जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हमको सब समझ में आया। ये सबसे बड़ा भ्रम है। और जीवन भर हमको उसी भावना में रहना है कि निरंतर गुरु जी की आज्ञा के पालन करने में जो भी आवश्यक है वो करते रहना है। वो काउंसलर के बीच साथ में रहकर उनका गाइडेंस प्रेरणा लेते हुए वो हो सकता है, या शास्त्र पढ़ के हो सकता है, मंदिर में आकर हो सकता है, उत्सव में भाग लेने से हो सकता है, सेवा करने से हो सकता है, यात्रा जाने से हो सकता है, जो भी करने से गुरु जी की आज्ञा का पालन हो सकता है उसको भक्ति जीवन कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए लोग कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी दीक्षित हैं और बाकी सारे लोग दीक्षा की अपेक्षा में बैठे हुए हैं, यानी कि उसी रास्ते में हैं। आज नहीं तो कल गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब तक, जहाँ तक दिल का सवाल है, जहाँ दिल दे दिया है तो संपर्क उनका हो चुका है, केवल समय की देरी है, संपर्क अभी वास्तविक रूप में भी हो जाएगा। अभी कितने लोग बैठे यहाँ पर, 100 लोग होंगे क्या, कितने लोग बैठे हैं, 125 लोग बैठे हैं। दुनिया में कितने लोग हैं, पालघर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं पालघर में, 5 लाख, 5 लाख में 125 लोग बैठे हैं यहाँ पर, और कुछ एब्सेंट होंगे तो समझो 500 लोग हो सकते हैं। कितने लोग हैं टोटल कॉन्ग्रीगेशन में, 800 लोग हैं, 300 लोग हैं जो दीक्षित हैं या छोला माला करने वाले हैं। तब सोच सकते हैं 5 लाख लोगों में से इस शहर में केवल 300-400 लोग ही इसमें कनेक्टेड हैं, और बाकी बहुत सारे होंगे 200-400-500 जो थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, उनको भी गिन लो आप, फिर भी कितना परसेंट हो गया, कुछ भी नहीं, एकदम क्या कहते हैं उसको, नगण्य, निग्लिजिबल है वो। और विश्व में आज की तारीख में अगर आप भक्त ढूंढेंगे तो विश्व में कहते हैं कि 650 कोटी लोग हैं, इधर राइट, मैं राइट, अरे भारत में कितने कोटी लोग हैं, 125 करोड़ इधर ही हो गए। तो 650-700 कोटी लोग हैं दुनिया में, उसमें 1 कोटी भी मुश्किल से आपको भक्त नहीं मिलेंगे, 1 कोटी भी नहीं मिलेगी, सब संप्रदाय के मिलके, हाँ खाली हरे कृष्ण की बात नहीं कर रहे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कितना दुर्लभ है ये जो आपने और हमने प्राप्त किया है, कितना दुर्लभ है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इतना दुर्लभ है ये, इतना दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें किसी संत का परिचय कॉन्टैक्ट होना दुर्लभ है, उसके बाद उसकी दीक्षा अनुग्रह प्राप्त होना दुर्लभ है, उसके बाद उसके आज्ञा पालन का मौका मिलना कितना दुर्लभ है, इस जीवन में रत होकर जीना तो बहुत ही दुर्लभ है। वो कहते हैं ना, हजारों में से एक व्यक्ति मेरे पास आता है, ऐसे मेरे पास आए हुए हजारों व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मैं अच्छा लगता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। और ऐसे जिनको मैं अच्छा लग रहा हूँ वो ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति मेरे, मुझे प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करता है, सीरियस प्रयास करता है, और ऐसे हजारों गंभीर प्रयास करने वालों में से एक व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। तो दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति अति दुर्लभ, अति 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 दुर्लभ, ऐसे हो जाता है वो। और हमको सारे रास्ते तय करने हैं, वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, उसमें कितना फिल्टरिंग है बीच में। हाँ वो भी थे ना, वो भरत महाराज, वो तो सब फिल्टर करके एकदम लास्ट में पहुंच गए थे, वहां से गिर गए, हिरण बनना पड़ा उनको। तो हम लोगों को कहने का इतना ही तात्पर्य मेरा, विनती आपको है कि यही जीवन है और इसी जीवन में आपको ये सब तय करना है। ये पंच जीवनी योजना नहीं है, पंच जन्म की योजना नहीं है, जैसे हम लोग पंचवार्षिक योजना होती है ना हमारी, पंचवार्षिक योजना, वैसे पंच जीवनी योजना नहीं है कि 5 जीवन में पूरा कर लेंगे, क्योंकि अगला जीवन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, कोई जानता नहीं है। हाँ आज पालघर में आप बैठे हैं मंदिर भगवान के सामने, कीर्तन में बैठे, प्रवचन में बैठे हैं, यही भाग्य है हमारा। कल हम कहाँ होंगे, कल का भी कुछ गारंटी नहीं, कुछ हादसा जीवन में हो गया, सब भक्ति भक्ति माला वाला तोड़ के सब भाग जाएंगे हम लोग। कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है किसी को भगाने में, भक्ति से थोड़े बहुत हादसे हाँ वहाँ हो गए ना जीवन में, सब छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोगों को देखा है हमने पिछले कई सालों में, इतना उत्साह से रहते हैं, एक छोटा सा हादसा होता है तो तुरंत क्या कहते हैं, विकेट गिर जाती है उनकी। हाँ तो इसलिए इसी जीवन में हमको गंभीर होना है, जो हमको प्राप्त हुआ है ना वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, जो हमारे नसीब में है। सब लोग आप यात्रा जाते हैं कि नहीं? वृंदावन कितने लोग गए इसमें से? तो हम लोग, ये मनुष्य शरीर है हमारा, इसको बदबू आती है, पसीना आता है, मुंह से बदबू आती है, कान से बदबू आती है, आंख से बदबू आती है, और कहां कहां से क्या क्या निकलते रहता है, ऐसा शरीर हमारा है। उससे कई गुना सुंदर और आकर्षक सुगंधी देवताओं का शरीर है, फिर भी ऐसे सुगंधी आकर्षक शरीर को लेकर देवता लोग वृंदावन में रह नहीं सकते, उनको परमिशन ही नहीं है। दिन में आओ, भगवान से मिलो, चले जाओ, या कोई सेवा हो तो करो, लीला में जो भी कुछ सेवा दिया उतना करना है, रात को निवास का नाम लेना नहीं है, ये देवताओं की स्थिति है। इसलिए 400,000 जो मनुष्य जीवन की जातियां बताई गई हैं चेतना के अनुसार, उसमें मनुष्य की जाति सबसे चेतना में और भाग्य में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उस जाति में ब्रह्मा भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, चंद्र, वरुण, सोम, सब लोग आते हैं उसके अंदर, वो हमारे योनि में है। हम पृथ्वी पर जीने वाले मानव है, वो देवता लोग में रहने वाले देवता है, तो देवता, दैत्य, दानव, राक्षस सब लोग उसके अंदर है, और उन सब में हमारा और आपका जन्म, पुरुष या स्त्री का हो, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करना पृथ्वी लोक पर सबसे आसान माना गया है। इसलिए इतना सारा ऐश्वर्य, सुगंध, आकर्षकता होने पर भी हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं, कोई गर्व करने की बात नहीं उसके अंदर, क्योंकि गर्व तब होता है जब आपको मिला हुआ भाग्य को आप जब अपनाओगे और उसको पूरा लाभ उठाओगे तो आप गर्व कर सकते हो। सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं कर रहे तो क्या हो फायदा है उसका? 1 करोड़ रुपए बैंक में रखा है, उसका 1 रुपया भी आपके हाथ में नहीं, आप रास्ते में भीख मांग रहे हो, तो उस 1 करोड़ रुपए का क्या लाभ है? है भाग्य आपका, लेकिन आपको उसका कोई उपयोग ही नहीं है, ना उपयोग करना चाहते आप। वैसे अनंत करोड़ों रुपए की संपत्ति आपको मिली है, ये भगवान नाम के रूप में। इस जीवन में भगवान का परिचय होना ये परम 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 भाग्य की बात है, जो संत के माध्यम से हो जाती है। नहीं तो हमारा परिचय केवल काम वासना और भोजन और ये और वो, ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक चीज़ों का ही परिचय हमारा होता है। जन्म से ही, जन्म होते ही चाचा, मामा, मामा, काका, इसका ही परिचय होता है, भगवान का परिचय नहीं होता है, बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए बार बार आपको विनती है कि पालघर क्षेत्र में बड़े ही अद्भुत तरीके से ये सब आरंभ हुआ था, कोई सोचा भी नहीं था इसको। 1986 में किसी ने ऐसा कल्पना नहीं किया था कि एक दिन हम यहाँ बैठेंगे और एक मंदिर होगा और उसमें हम बैठ के प्रवचन करेंगे और उसमें 125,000 लोग बैठे होंगे, या उत्सव में 500 लोग बैठे होंगे, रथ यात्रा में 1,000 लोग आएंगे, और एक मंदिर होगा, उसके 4 केंद्र होंगे, एक मनोरम में होगा, एक बोईसर में होगा, हाँ, और कहाँ पर है, सफाड़े में होगा, और कहाँ पर है, तारापुर में होगा। ये किसी ने प्लानिंग नहीं किया था उसका, बस जो गुरु जी की इच्छा थी उसको हम करते गए और जो भी होना था वो अपने आप होते गया। इतना प्रभाव है इसके अंदर, हम सब लोग बच्चे थे, ये लोग 15-16 साल के थे और हम लोग कुछ 18-19-20 साल के थे, कोई 20 साल के ऊपर होंगे, 1-2 सब लोग जवान थे, और यहाँ पर आकर कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ साधन नहीं था, लेकिन गुरुजी की सेवा में थे और इतना आनंद का अनुभव किया है। हाँ, आगे भगवान मिलेंगे, वैकुंठ जाएंगे, वो सब बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन उस समय पर इतना दिव्य आनंद का अनुभव किया है, मत्सर रहित, द्वेष रहित, काम रहित, हाँ, लालसा रहित, ऐसा सब आनंद का अनुभव किया है, क्योंकि कृष्ण भावना केवल सुसुखम अव्ययम है, भगवान का संपर्क ही दिव्य है, और जैसे ही भगवान का संपर्क जीव का होता है उसमें वहीं से आनंद का आरंभ होता है। आगे पुण्य कर्म, पाप कर्म का हिसाब किताब तो आगे होगा, लेकिन उसी क्षण से जीव को आनंद का अनुभव होने लगता है। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आप बोलेंगे कि भाई 5 साल पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे उसके बाद में, तो 5 साल तक टिकना पड़ेगा ना, लेकिन शुरू से ही जैसे ही गले में स्टेथोस्कोप पहना और वार्ड में पढ़ने गए तो आप डॉक्टर लोग आपको बोलने लगते हैं, तो वहीं से अच्छा लगने लगता है कि भाई ठीक है, अभी लोग डॉक्टर तो बोल रहे हैं, कम से कम बनूंगा 3 साल के बाद, और लेकिन अभी से बोलने लग रहे लोग, तो वो प्रेरणा मिलती है ना, कम से कम एक इंसेंटिव मिलता है। उसी प्रकार से हम शुद्ध भक्त परम संत अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान के नाम का और भगवान का संपर्क होते ही आनंद का अनुभव होता है। पहले बार जब मंदिर में प्रसाद खाया था उसमें परम आनंद हुआ था, सच कह रहा हूं मैं आपको, ऐसा अद्भुत आनंद हुआ था कि क्या है क्या उसके अंदर। मैं पूछता ही रह गया उनको कि ये दाल में क्या है, ये चावल में क्या किया आपने, सब्जी में क्या डाला, इतना स्वाद कैसे आ रहा है उसके अंदर। और वो कह रहे थे इनको इसमें कुछ खास नहीं, इसको भगवान को भोग लगाया है। तो उस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता कि भगवान को केवल भोग लगाने से इतना स्वादिष्ट कैसे बन सकता है ये। लेकिन बाद में पता चला कि वही सत्य था, वो हमको भयगा नहीं रहे थे कि ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, वो सीक्रेट नहीं बता रहे हैं और ऐसा कुछ बता रहे हैं कि भगवान को भोग लगाया सब कुछ टेस्टी हो गया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बताना चाहते नहीं, ऐसा नहीं था वो। तो भगवान तो दूर ही है, अभी भगवान का प्रसाद खाते ही और भगवान का नाम लेते इतना आनंद का अनुभव है। से अध्यक्ष जब पहली बार आए थे तो वो कीर्तन सुनकर ही आपको आनंद आया था कि नहीं, और प्रसाद खा के कोई परिचय नहीं, रस्ते में मिला था उसको कोई ले गया उधर मासवण में, पहली बार सब देखा क्या हो रहा है इधर, गुरु महाराज थे और रामनवमी थी ना, रामनवमी का उत्सव था मासवण में, और मैं मनोवा मराठी अनुवाद कर रहा था उसका, और ये सब अटेंड कर रहे थे, प्रसाद पाया, आनंद आया बहुत। और उनको सुदामा प्रभु ले गए थे और उसमें बताया था उन्होंने बहुत मजा आएगा, चलो आप मजा कर रहे हैं ना, चलो चल गए इधर से 18 किलोमीटर, और मजा आया उनको, और इतना मजा आया कि आज तक आ रहे हैं है ना, ऐसा मार्ग है ये। इसलिए हम आपको बार बार विनती करते हैं, गंभीरता से लो इसको, आधे दिल से मत करो, पूरे दिल से करो, इसमें आपका ही हित है। सबसे पहले खुशी आपको होनी है, बाद में किसको होगी वो देखा जाएगा, सबसे पहले खुशी आपको होगी और वो खुशी निरंतर रहेगी। आपके जीवन में सुख दुख हो, संकट हो, समस्या हो, वो सब होने के बावजूद भी आपको खुशी मिलेगी, ये इसका महात्म्य है। इसलिए गंभीरता से लो, भगवान का संपर्क होना, भगवान के नाम का संपर्क होना, भगवान के भक्त का संपर्क होना, भगवान की लीला का संपर्क होना, भगवान के विग्रह से संपर्क होना, भगवान के धाम से संपर्क होना, ये बहुत ही अति दुर्लभ बातें हैं इस दुनिया की। और मैं क्या कहता हूं, जब कह रहा हूं कि संपर्क होना मतलब सही संपर्क होना। भारत में सब लोग धाम में पहुंचते हैं लेकिन एक कर्मकांड के रूप में पहुंचते हैं, चलो भाई हमारा भी एक तीर्थ हो गया, हमारा वृंदावन हो गया, अभी बद्रीनाथ करना है, फिर बोलेंगे बद्रीनाथ हमारा हो गया, फिर बोलेंगे अभी पूरी करना है, पूरी भी हमारा हो गया, एक रिचुअल, एक ऐसे एक रिवाज के रूप में करते हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है कि हम वृंदावन में एक बार नहीं जाते हैं, बार बार अनंत बार लगातार जाते रहते हैं हम लोग, वहां पर उन्हीं बातों को बार बार सुनते हैं, उसी जगह बार बार जाते हैं, वही महाप्रसाद बार बार खाते रहते हैं, वही मूर्तियों को रोज सुबह बार बार जाके वहां देखते रहते हैं, क्या है क्या उसके अंदर। आजीब 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 मंटे की झाला आमचं वृंदावन परत तिथे काय यायचं, सगळीकडे कुठेतरी घेऊन जा, ऐसे हमारे रिश्तेदार बोलते हैं। लेकिन हम पागलों की तरह वही वापस जाते रहते हैं, एक साल में 10 बार जाते रहते हैं, और यहां भक्त बोलते हैं कितने भाग्यवान हैं आप, साल में 10 बार जाते हैं वृंदावन में, क्योंकि उसको संपर्क कहते हैं, उसको धाम का निवास, धाम संपर्क कहते हैं। वैसा हमको भगवान का भक्त के साथ, भगवान की लीला के साथ, भगवान के विग्रह के साथ, भगवान के प्रसाद के साथ, भगवान के धाम के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क का मतलब ऐसा है कि उसको अनंत बार भी ग्रहण करेंगे तो भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बस हो गया, अभी जितनी बार ग्रहण करेंगे उतनी बार लगना चाहिए कि और चाहिए, आप संतुष्ट भी है और असंतुष्ट भी है एक ही साथ में, ये केवल भक्ति में हो सकता है। आप प्यासे भी है और पास की प्यास बुझ भी गई आपकी, ऐसे केवल भक्ति में हो सकता है, और किस में होता है ऐसे, नहीं होता किस में ऐसे, या तो आप दुखी हो या तो सुखी हो। लेकिन भगवान को प्राप्त करके सुखी भी हैं और भगवान को प्राप्त करके दुखी भी हैं, और चाहिए भगवान, और चाहिए, और चाहिए, और संपर्क चाहिए उनका, और उनमें घुल मिल जाना है, और रथ होना है उनके अंदर, इसलिए मंदिर में आना चाहिए। नहीं तो पालघर में हम लोग भी वैसे कर रहे थे ना, मंदिर को बांधा, क्योंकि मंदिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ है, भगवान का धाम है ये, साक्षात ठाकुर जी यहाँ निवास करते हैं, और अपने साथ अब खुद निवास करते समय सबको अपना संग देते हैं, साक्षात वैकुंठ है ये। और वैकुंठ में क्या होता है, सब भक्त लोग प्रेम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई द्वेष नहीं करते हैं, कोई क्या कहते हैं उसको, स्पर्धा नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। तमाल कृष्ण महाराज जी कहते थे कि प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए हैं वो भक्तों के परस्पर प्रेम संबंधों को अनुभव करने के लिए बनाए हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति के लिए बनाए हैं। शुरुआत प्रसाद से होती है, सत्संग से होती है, कीर्तन से होती है, दर्शन से होती है, उत्सव से होती है, लेकिन उसके बाद में जब हमको कुछ समझ में आता है भक्ति के बारे में तो हम गुह्यम आख्याति पृच्छति यानी एक दूसरे के साथ में हृदय की प्रेम की और भक्ति की बातें चर्चा करने के लिए मंदिर में आते हैं। कथयम तुम आम तुभ्यम क्या आगे तुष्ट नहीं परस मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम और क्या कथयंतम माम तुभ्यम तुष्यंति च रमंति च, मतलब उसी में एक दूसरे की हृदय की भक्ति की बातें सुनना और अपनी बातें उनको बताना, उसका आदान प्रदान करना। गुह्यम आख्याति यानी गुह्य जो हमारे अंदर की बात है उसको बोलना, और पृच्छति यानी उनको पूछना, उनका भी सुनना, और इस तरह से गहरे स्तर पर एक दूसरे के साथ भक्तिमय विचारों का आदान प्रदान करना, शास्त्रार्थ विचार और विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान करना, ये मंदिर का मूल उद्देश्य है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ में दुनियादारी की बातें छोड़कर भगवान के विषय में बातें करने में रुचि रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके शेयर मार्केट की बातें नहीं करते हैं, कौन सी साड़ी कहाँ से मिल रही है, कौन सा शर्ट पीस कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ सेल लगा हुआ है, इसकी बातें नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो मतलब आप मंदिर बनाने का जो उद्देश्य है उसको फेल कर रहे हैं, खुद के लिए कम से कम, बाकी लोग उसका लाभ लेते होंगे, हम लोग उसको फेल कर रहे हैं। इसलिए मंदिर बनाया गया, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप निस्पृहता से शुद्ध मन से भगवान के विषय में आकर चर्चा कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, भगवान का और उनके भक्तों का संग कर सकते हैं, और वैकुंठ में जीवन कैसा होगा उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका परिचय कर सकते हैं, और वहाँ जाने की तमन्ना से प्रयास कर सकते हैं, तमन्ना और प्रयास कर सकते हैं। और मंदिर में आने का उद्देश्य है कि यहाँ पर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, और भगवान के बारे में सुनने से क्या होता है, भगवान के बारे में सुनने से भाग्य का उदय होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी भगवान के विषय में रुचि नहीं होना, यही दुर्भाग्य है। पैसा नहीं है, सुंदर नहीं है हम, या पढ़े लिखे नहीं है, ये दुर्भाग्य नहीं है, इसको लोग दुर्भाग्य समझते हैं। सबसे अधिक दुर्भाग्य इसको समझते हैं अगर पैसा नहीं है तो, गरीब है हम, क्या सबसे दुर्भाग्य तो हमारा गरीब है, लेकिन ये गरीबी का लक्षण नहीं है, ये दुर्भाग्य का लक्षण नहीं है। भगवान के विषय में रुचि न होना ये दारिद्र्य है, दुर्भाग्य है। सबसे बड़ी क्या कहते हैं दुखद घटना यही है कि अगर हमको भगवान के विषय में रुचि नहीं है, और जिस समय भगवान की रुचि उत्पन्न होती है वही हमारा भाग्य का उदय होता है, और कथा सुनने से भगवान के विषय में स्वतः रुचि उत्पन्न होती है, स्वाद उत्पन्न होता है, और वो भगवान की कथा से संपर्क होने के लिए थोड़े से पूर्व संचित की आवश्यकता होती है। जाने अनजाने में आपने किसी की सेवा की होगी, भक्तों की कोई दान धर्म किया होगा, जो भक्तों के पास पहुंच गया होगा, भगवान की सेवा में लग गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी पासपोर्ट ऑफिस में गए, वो गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं, कोई संत आता है वहाँ पर, उसका पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम है, और वो ऑफिसर को थोड़ा दया आती है तो तुरंत उसको हेल्प करके उसका काम कर देता है, और वो जाते हैं अपने प्रचार करने के लिए। उनको पता नहीं कि ये संत है क्या, उनको लगता है कि इनका हेल्प करना चाहिए, और कर दिया उसने, अनजाने में कर दिया। उसको कहते हैं सुकृति, सुकृति यानी आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं लेकिन कर जरूर रहे हैं आप, तो सुकृति का ऐसे जमा करने से फिर आगे जाकर भगवान से संपर्क का भाग्य प्राप्त होता है। सुकृति बहुत आवश्यक है, और वही सुकृति पूर्व कार्य जो है वो आप जानकारी के साथ करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं, वही पासपोर्ट में ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको पता है कि ये भक्त है और मुझे भक्त की सेवा करनी चाहिए, आओ भाई महाराज जी आइए, क्या काम है आपका, मुझे आपको मदद करनी है। जानकारी के साथ कि संतों की सेवा करना बहुत आवश्यक है, जानकारी के साथ अपने पद का उपयोग वो संतों की सेवा करने के लिए कर रहा है तो वो उसकी भक्ति हो जाती है, और बिना जानकारी से जब करता है तो वो सुकृति बन जाती है, और किसी फल के हेतु वही कार्य करता है तो वो कर्मकांड हो जाता है। कार्य वही है और एक ही कार्य है। वो संत आया पासपोर्ट खिड़की में, मेरा मदद करो बोला, तो बोलेगा मुझे 500 रुपये दे दो पीछे, फिर मैं अभी कर देता हूँ काम। कार्य वही है, लेकिन लाभ हेतु किया, स्वार्थ हेतु किया तो वो कर्मकांड हो गया। बिना किसी लाभ के किया, मुझे जानकारी नहीं है व्यक्ति कौन है, तो वो सुकृति हो गई, और पूरी जानकारी के साथ किया तो वो भक्ति हो गई। इसका मतलब लोग सब लोग कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो पूरी जानकारी के साथ करते हैं भगवान की में सेवा में, वो भक्ति हो जाती है, और वो करने के लिए हम यहाँ सीखते हैं। तो वो जो भाग्य है वो कथा से अपने आप प्राप्त हो जाता है। तभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का महोत्सव शुरू होने वाला है, सीजन चालू होने वाला है ना? कब शुरू होगा सीजन वो बताइए? हाँ, स्नान यात्रा, कभी है वो स्नान यात्रा? 29 जुलाई को। कितने लोगों को पता है? 29 जुलाई को ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है, और उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव का आरंभ होने वाला है, रविवार के दिन, 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। रविवार है क्या? शुक्रवार है। तो ये जगन्नाथपुरी का उत्सव का शुभारंभ है उस समय। लेकिन उसके पहले जाकर सूक्ष्म रूप में ये रथ यात्रा का जो इतिहास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इतना उत्कट है, उसके कई 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से कथाएं हैं, लेकिन उन सबका जो बीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारा जो रथ यात्रा का लीला है भगवान का, वो जगन्नाथ भगवान क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि भगवान श्री वृंदावन में 11 साल 52 दिन रहे, मतलब कुछ ही साल, थोड़ी उम्र रहे वहाँ पर, लेकिन ऐसी उत्कट लीलाएं उन्होंने वृंदावन में की, ऐसी उत्कट लीलाएं की, एकदम छोटे से तभी किया, फिर जब बड़े हो गए तब किया, गोवर्धन को उठाया, माखन चुराया, रास रचाया, राक्षसों को मारा, और क्या क्या नहीं किया, गायों के साथ खेले, गौचारण किया, ग्वाल बालों के साथ खेले, अद्भुत कार्य किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अभी नंदगांव में, गोवर्धन में, वृंदावन में ऐसे पेड़ थे जो नंदगांव से मथुरा तक उसकी शाखा फैली हुई है, और जो मथुरा में पेड़ लगाया उसकी शाखा नंदगांव तक पहुंची हुई है। भांडेरवन में जो भांडेर को वट का वृक्ष है उसकी शाखा पूरे ब्रज में फैली हुई है। तो ग्वाल बाल कभी कभी गौचारण करते थे ना, तो चलते थे शाखाओं पर और गाय चलती थी जमीन पर, और वो चलते थे और ऊपर से चलते थे ऐसे खेल खेल में, फिर बीच में नदी आती थी तो उतर जाते थे और गायों को सवारते थे, और कभी कभी नदी पार भी शाखाओं से करते थे, क्योंकि 5 वन उस तरफ है, 7 वन इस तरफ है, तो कभी यहां से वहां जाना है तो वो पेड़ की शाखा से जाते थे। ऐसे अद्भुत लीलाएं होती थी वहां पर। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठा के रखा था उन्होंने। कौन सी लीला में ऐसा किया था उन्होंने बताइए आप? नरसिंह भगवान की लीला में किया था कि राम भगवान की लीला में किया था? कभी नहीं किया था। कृष्ण भगवान जब आते हैं तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में पूर्ण लीलाएं करते हैं और अद्भुत लीलाएं करते हैं। बाकी सारे जितने अवतार हैं वो जो उद्देश्य के लिए आए हैं वो लीला करके चले जाते हैं। प्रभु रामचंद्र बहुत लीलाएं करते हैं 1000 साल के लिए, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाएं करते हैं। एक पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श बहन, हाँ, ये सब कुछ उनका काम है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब आते हैं तो पूरे 64 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, पूरे 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है सब कुछ करते हैं, ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। यहाँ तक इतने से बालक थे ना, तो एक दिन वो ऐसे सीढ़ी में रेंगते हुए जा रहे थे, तो एक सीढ़ी में ऐसे लटक गए, क्योंकि उनका पेट थोड़ा सा बड़ा था, तो पेट के बल पे एक सीढ़ी पे लटक गए, पैर ऊपर लटक रहे हैं, और ऐसे ऐसे भगवान है। और नारद मुनि वहां से जा रहे हैं और देख के हंसने लगे और तुरंत रोने लगे उसके बाद में। क्यों? उनके मन में विचार आया, देखो परब्रह्म परात्पर भगवान गोलोकेश्वर बालक बनकर नंद के आंगन के सीढ़ी में लटक रहे हैं पेट के बल पे, और ऐसे भ्रमित है अभी क्या किया जाए, मैं पैर कहाँ पैर रखूँ, कैसे उतरूँ, कोई आएगा मुझे उठाने के लिए, ऐसे भ्रमित है जो सब विश्व को चलाने वाले हैं वो खुद ऐसे लटक रहे हैं। तो नारद मुनि देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं और बाद में रोते क्यों हैं, अरे वो मायावादी लोग जो भगवान को निराकार समझते हैं उनको ये आनंद कैसे पता चलेगा कि वही परात्पर भगवान जो साकार भगवान है देखो लटक रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला करते भगवान, जिनसे जिनसे पूरा विश्व डरता है, साक्षात भय भी उनसे भयभीत है। वही यशोदा माता के लाला बनने के बाद में जब आकाश में बादल गरजते ना, डर के मारे गोद में भाग जाते, मैया बचा लो मैं डर रहा हूं, बहुत डर लग रहा है। अद्भुत है ना ये सब कुछ, जिनके शरण लेने के बाद में आप निर्भय हो जाते हो, और वो जो अवतार लेते हैं तो गड़गड़ाहट सुनकर भाग जाते हैं। नंद महाराज भी अच्छे में थे, कभी बोलता है कोई, अरे तुम्हारा लाला कोई देवता होगा, तो वो कहते हैं कैसा देवता होगा, अभी आपको बोलेंगे आपका बेटा देवता है तो आप कितने गर्व करेंगे, बोले क्या देवता होगा ये, जब माखन नहीं मिलता है, किसी घर में चोरी कर जाता है और माखन नहीं मिलता है तो ये वहां पर पेशाब कर देता है, देवता लोग ऐसे करते क्या, ऐसे बोल रहे हो। कोई बोल रहा है ऋषि है, ऋषि कोई, देखो इतना बड़ा पर्वत उठाया, मतलब कैसा ऋषि है, ऋषियों का बहुत इंद्रियों में कंट्रोल होता है, ये जब भूख लगती है तो क्या करता है, थैथयाट कर देता सब जगह, चोरी करके खाता है, घर में पेट भर पेट खा के जाता है फिर भी पड़ोसों के पास जाके चोरी करता है, कोई ऋषि ऐसे करता है क्या? फिर देवता बोलते हैं, फिर कुछ कोई बोलते हैं, तो ये सबको काटते रहते हैं, हर एक बात को काटते रहते हैं, क्योंकि इनके मन में ऐसा माधुर्य का इतना प्रभाव है कि भगवान का कोई ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे तो उनको वो पटता ही नहीं है, यकीन ही नहीं होता उसके ऊपर, खुद ही उसको कैंसिल कर रहे हैं, ब्रजवासी लोग बोल रहे हैं खुद ही कैंसिल कर रहे हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि ऐसे अद्भुत लीला ब्रजवासियों के साथ भगवान ने किया। और सबसे पहले क्या किया, ब्रजवासी लोग सब सिद्ध महात्मा थे, सिद्ध महात्मा का मतलब क्या होता है, उनको पूरा ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ ज्ञान का साक्षात्कार भी होता है, अनुभूति भी होती है उनको। तो सबसे पहले इन सारे ब्रज में भक्त जन्म लेने वाले सब भक्तों का ज्ञान का हरण करते, सबसे पहले ज्ञान का हरण करते, ये ज्ञान कि मैं भगवान हूं ये सब हरण कर लेते हैं। बचा क्या, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रियकर है, ये मेरा, यही बचता है और कुछ बचता नहीं, ये मेरा सखा है, मित्र है, यही बचता है, सब भगवान है ये भूल जाते हैं। फिर वो लीला करते हैं ऐसे सब, और क्या कहते हैं, इति दृक्सलीला भीर आनंद कुंडे, अरे सब ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबाया उन्होंने कांस्टेंट। ये सब करने के बाद में अचानक कंस को मिलने के बहाने, कंस के धनुर्यज्ञ के अंदर सहभाग लेने के लिए के बहाने अचानक चले जाते हैं और बोलते हैं कि परसों आऊंगा। वो सीधा मामा खड़े हैं भांडीरभट में, बोल रहे, अरे तुम जा रहे हो, हाँ डोंट वरी मैं परसों आऊंगा, देखो मैं एक क्षण भी आपके बिना रह सकता नहीं हूं। एक लीला उनकी ऐसी है कि वो रात रात जगते थे भगवान की याद में, गौचारण करके शाम को बहुत दुखी हो जाते थे और रात भर रोते थे, और एक बार जाके बोले मैं नहीं रह सकता आपके बिना। तो फिर कृष्ण भगवान ने अपने मैया से विनती किया कि कुछ कीजिए माया माता, कुछ कीजिए, मेरा चित्रपट बना दीजिए। तो फिर चित्रा सखी ने चित्रपट बना दिया और वो सुदामा को दिया, तो थोड़ा बहुत उसका विरह शांत हो गया, लेकिन फिर भी तड़पता ही रहा। वो सुदामा जो एक दिन की एक रात में इतनी तड़पता है, तो कह रहे दो दिन के बाद आऊंगा, तो बोले नॉट पॉसिबल, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा, इस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहूंगा, और जब तक तुम आओगे तब तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा ना कुछ नहीं करूंगा। तो वहां से वो लोठा बाबा आ गया और एक ग्वाल आया, वो कहने लगा अरे आज तो मेरा स्पॉन्सरशिप था, आज गौचारण मेरे घर से भोजन आने वाला था, तो कोई बात नहीं परसों आऊंगा मैं, तो वही वो बोला कि मैं भी बैठ जाऊंगा गिरिराज के कोने में, और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक बैठा रहूंगा। और गए भगवान, फिर गोपियां उनको रास्ते में मिली, वो सब लोग ऐसे रास्ते में सोई हुई है। अक्रूर जी उनको रथ पर लेके जाने की तैयारी में है कृष्ण बलराम को, और जिस रास्ता से जाने वाले हैं मथुरा, उधर सब रास्ते में सो गए। बोलते हमारे ऊपर से रथ ले चलो, हमको जीना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आप जाएंगे और हम जिएंगे, नॉट पॉसिबल। आपको जाना है, हमारे छाती पर रथ चला कर ले जाइए, हमारे जीवन का अंत कीजिए, हम जाएंगे, फिर आप जाना। तो भगवान समझाते हैं उनको, अरे प्रेम ऐसा नहीं होता है, थोड़ी श्रद्धा भी रखनी होती है प्रेम के अंदर, ऐसे इतना भावना प्रदान होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, श्रद्धा रखो ना, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, फिर भी नहीं माने। तो भगवान ने क्या क्या बताए, बिजली गिराया, सॉरी बिजली नहीं, वज्र गिराया, वज्र, बिजली भी कुछ नहीं उसके सामने, वज्राघात किया उन्होंने। और ऐसा धमाका हुआ, उधर एक गांव है वज्रवारी नाम का, नंदगांव, थोड़ा नंदगांव से मथुरा के रास्ते पर है, अखरूर गमन रास्ते पर वो गांव है वज्रवारी, उसको बिजवारी कहते हैं आज। ऐसा धमाका हुआ कि सारे गोपियां तत्काल बेहोश हो गई वो ध्वनि सुनकर। तो कृष्ण बलराम बोले, अखरूर जी महाराज भगाओ रथ को, अभी तुरंत भगा दो, ये जगने के पहले भगाओ। तो कितने जोर से भगाया होगा रथ, वो रथ है वो, ऐसा कोई चलने का काम नहीं है। तो रथ लेकर वो मथुरा की ओर भागे। कुछ देर बाद गोपियां जग गई, मतलब होश में आ गई। और जो होश में आने के बाद देखती है, अरे कहीं कृष्ण बलराम है ही नहीं, मतलब गए वो, तो मथुरा की ओर इतनी तेजी से भागे कि पहियों पर बहने भागने वाले रथ को उन्होंने पकड़ा एक गांव में जाकर। कितने जोर से भागे होंगे सोचो आप, वो अपने फुल स्पीड से उनको आदेश मिला है जाओ आप, तो रथ कितना भाग सकता है फुल स्पीड से, उससे भी हवा की गति से भागकर उन्होंने पलसो गांव में उनको पकड़ा। फिर वहां वापस बहस हो गई, वापस चर्चा हो गई, भगवान ने समझाया कि देखो मैं परसों आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा, शीघ्र अगस्त्य, मैं आऊंगा शीघ्र आऊंगा। तो वो गांव का नाम पड़ा सी पलसो, यानी शीघ्र और पलसो, शीघ्र आऊंगा शीघ्र, सी सिंह नाम पड़ा, और एक गाँव का नाम पलसो, एक साथ में ही हो गाँव, सी पलसो, मथुरा के रास्ते पर है। ये सब करके भगवान गए, दो दिन में लौट के आए क्या? कितने दिन के बाद लौट के आए, किसी को आइडिया है क्या? एनीबडी नोस? बीच में उद्धव जी को भेजा, बीच में बलराम को भेजा, खुद नहीं आए। और फिर 112 साल बीत गए, परसों आने वाले व्यक्ति जो है 112 साल तक नहीं आए। हर रोज गोपियां, उन्होंने कहा था ना श्रद्धा रखो, श्रद्धा रख लिया उन्होंने, आएगा, बताया ना आएगा, बोला है मतलब आएगा। तो वो रोज सवेरे से लेकर जो 10-11 साल 52 दिन उन्होंने किया, क्या किया था, रोज सवेरे प्लानिंग करना है, कहाँ मिलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा राग गाना है, कौन से ताल में नृत्य करना है, कौन से सुर में, कौन से राग में गाना है, किस वन में जाना है, झूला झूलना है कि होली खेलनी है कि क्या करना है। रात भर का हमारा एक ड्रामा 1 घंटे का होता है, हम 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं। ये 12 घंटे का ड्रामा जो है वो हर रोज करते थे, पूरा शाम से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, भोर के समय तक पूरा प्लानिंग होता था उनका। और सज धज कर, श्रृंगार सब कुछ करके, भोजन का इंतजाम रोज करते थे, रोज, हर रोज। बीच में एक दिन नृत्य किया था शुरुआत में, तो रात भर नृत्य किया था, और 432 कोटि साल नृत्य किया था, मतलब ब्रह्मा की एक रात तक। ऐसा अद्भुत कार्य किया था, ऐसे अद्भुत अनुभव उनको दिया था। तो उसी अनुभव की अपेक्षा में ये रोज तैयारी कर रहे हैं, और रोज देख रहे हैं कि रात हो गई है अभी तक नहीं आए, मतलब अभी नहीं आएंगे, तो सब मालाएं तोड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, लड्डू तोड़ रहे हैं, और छाती पीट कर रात भर रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूरज का उगय होता है, नई आशा का किरण लेकर फिर दोपहर को, फिर दिन में अगेन अगले दिन की तैयारी करने थे। ऐसे उन्होंने 112 साल बिताए। शबरी ने ऐसे ही कितने साल बिताए थे? 80 साल बिताए थे। 5 साल की उम्र में उसको भगवान ने कहा था, गुरु ने कहा था कि आपको राम के दर्शन होंगे, और वो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि वो पूछना भूल गए कभी। आपको इसी जन्म भगवान के दर्शन होंगे, प्रभु राम आपको दर्शन देंगे, तो इतनी आनंद में हो गई वो कि वो सब संत लोग चले गए और बाद में उसको याद आया कि मैं पूछना भूल गई कभी होंगे, तो शायद कल भी हो सकते हैं। तब से उन्होंने फूल बिनना, बेर बिनना शुरू कर दिया। आपको लगता होगा कि उसने उसी दिन बिने होंगे बेर जिस दिन राम आए, नहीं, वो जिस दिन राम आए ना वो तो बुढ़ी होकर झुक गई थी पूरी, वो उनकी कमर है ना पूरी बैंड हो गई थी, और वो झुकी हुई कमर से वो रास्ते पर फूल लगा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पथ में दो आदमियों के चार चरण आ गए। तब उसको उठने को भी नहीं हो रहा था, तब वो पैर देखकर बोली, अरे प्रभु आ गए आप, अरे प्रभु आ गए आप, ऐसे बोला। मतलब उसको पता नहीं था कि आज आने वाले हैं, तो रोज ही आने के लिए तैयारी करते, रोज ही वो 80 साल तक रोज बेर चुन रही थी और मीठे खाकर देख रही थी, अलग रख रही थी, हर दिन किया उसने ऐसे। कितना संयम होगा उसके अंदर, कितनी आशा होगी, कितनी प्रभावी आशा होगी उसकी। ऐसे गोपियों ने 112 साल तक हर रोज किया जो उन्होंने पहले 12 साल तक किया था। उसके बाद में उनको खबर मिलती है कि श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय आने वाले हैं और हमें सबको निमंत्रण है, आइए, और उनको मिलिए वहां पर। तो ये लोग सब निकले, गोपियां निकले, यशोदा महारानी निकली, नंद महाराज निकले, बड़े ग्वाल बाल, उपनंद बाबा, सभी निकले, सारे ब्रज ही निकल गए वहां पर, क्योंकि पहली बार उनका ऑफिशियल न्योता आया है कि हमको मिलना है आपको। दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन जब तक उनकी आज्ञा नहीं है तब तक हमारी कितनी इच्छा होगी तो क्या फर्क पड़ता है, जब आज्ञा होगी तब जाना है। नहीं तो मथुरा को दूर नहीं था, वो तो रोज जाकर मथुरा में पहले माखन बेचते थे ना, तो रोज का रास्ता है उनका, जाना आना, माखन दही दूध बेचना, उधर घी बेचना, चलने का पैदल रास्ता था उनका रोज का। लेकिन गए क्यों नहीं वो वहां पर मिलने के लिए, कई दिन तो वहां रहे ना मथुरा में, वो आदेश नहीं था उनके लिए जाने का। भगवान की जो इच्छा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी क्या इच्छा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान की इच्छा है कि आप यहीं रहो, उनको वहाँ रहना है तो वहीं रहे वो। तो सब निकले और कुरुक्षेत्र पहुँचे। तब उनके मन में क्या भाव है, 11 साल के उम्र का जो कृष्ण था ना वही छवि मन में है उनके। वो तो इतना सा था ना बालक, मक्खन चोरी करने वाला छोटा सा बालक, नाचने वाला, खेलने वाला, कूदने वाला, गौचारण करने वाला, वही छवि उनके मन के अंदर है और उसी को लेकर वो उसी को मिलना चाहते हैं। उनको जिसको मिलना है वही कृष्ण है जिस रूप में वो वहां से गया था, लेकिन वो वैसा ही रहा क्या अभी, वो तो 125 साल का हो गया अभी, द्वारकाधीश बना हुआ है, राजा बना हुआ है, 16108 पत्नियां हैं उसकी, 16108 उसके महल है, ऐसी ऐसी एक रानी है, क्या कहें उनके, वर्णन करें, इतना ऐश्वर्य है। समुद्र के अंदर, समुद्र को हटाकर द्वारका नगरी बसाई है ओवरनाइट, एक इच्छा से आदेश किया और सारे लोगों को मथुरा से उठाया, मतलब मथुरा में सोए थे वो अपने घर में, पुराने वाले सुबह उठे तो द्वारका के नए घर में उठे सब लोग, कोई शिफ्टिंग का तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। हमको कितना कष्ट होता है, और शिफ्टिंग होने के बाद भी, इतना कष्ट उठाने के बाद भी 3 महीने तक पता चलता नहीं कि हमारी पैंट और शर्ट किधर है, मिलता नहीं है, गायब होते रहता है, सेटल होने को 3 महीने के बाद लगता है। ये मथुरा में सोए और द्वारका में उठे, कितना ऐश्वर्य था, मतलब सोचिए आप, इच्छा मात्र से इतना ऐश्वर्य है, उनकी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे अभी जहाँ जाना होगा, पता नहीं कौन सी जगह है, जान पहचान, हवा कैसे होगी, भोजन क्या मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ व्यवस्था फर्स्ट क्लास करके रखी थी। ऐसे भगवान है, अभी राज वस्त्र पहने हुए हैं, राज मुकुट पहना हुआ है, राज दंड लेकर चल रहे हैं, आगे सैनिक है, पीछे सैनिक है, बाजू में सैनिक है, बिगल बज रहा है, संगीत बज रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, ब्राह्मण वृंद श्लोक गा रहे हैं, और बहुत सारे रथ आते हैं, उसमें सब सुंदरियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं वो, और सबके आखिर भगवान आते हैं। इतना ऐश्वर्य है उनका, इतने अलंकार पहने हुए हैं, बाप रे, कभी दिखा नहीं उनको ऐसे। तो कहते हैं कि जितना विरह उनको 112 साल में हुआ था, अति उत्कट हुआ था, मतलब उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना दुख था उनको, अंदर से आत्मस्वरूप में आत्मस्तर पर वो दिव्य आनंद का भगवान के भाव रूपी संग का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जैसे भगवान चले गए ना, सबके हृदय में उन्होंने प्रवेश किया। यशोदा माता, नंद महाराज, गोपियां, ग्वाल बाल, गाय बैल, जितने भी जानवर, जितने भी जीव थे, सबके हृदय में उन्होंने भाव रूप में प्रवेश किया, उनको सबसे सूक्ष्म अति उत्कट संग का अनुभव दिया। और बाह्य रूप में सब लोग विरह के भाव में थे, दुख भोग रहे थे एक प्रकार से। ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया इतने रोए कि नंद गांव में पहाड़ से दो नदियां निकल गई। कंटिन्यूअस जब से भगवान गए तब से दो नदियां निरंतर बहती रही। जब उद्धव जी गए ना उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि नंद भवन किधर है, और सब लोग ऐसे पुतले की तरह थे नंद गांव में, सब लोग ऐसे चित्रपट की तरह थे, कोई भावना नहीं, ऐसे एकदम दुखी, इतने दुखी, पराकाष्ठा के दुखी थे कि एकदम चित्रपट की तरह थे, उनके भावना रहित चेहरा था उनका। उसमें से एक को पूछा कि नंद बाबा को कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो दो नदियां हैं ना, वो पर्वत से आ रही है, उनके किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। तो नदियों के किनारे किनारे चलते गए और नंद भवन में गए, तो नंद भवन में नंद बाबा यशोदा मैया दोनों रो रहे हैं, उनके अश्रु जो है नदी के रूप में बह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना दुख होगा उनको, कितना दर्द का अनुभव किया होगा। अब इतना अनुभव दुख का किया उन्होंने, भगवान के विरह का अनुभव किया, कहते हैं कि उससे भी करोड़ों गुना अधिक अनुभव विरह का भगवान को देखते हुए हुआ उनको, क्योंकि जिसको देखने के लिए वो आए थे वो नहीं था, वो था लेकिन फिर भी वो नहीं था। उनके मन में इतनी तड़प पैदा हुई, जैसे कि समझो आपको, आप समझो अभी आज एकादशी का व्रत है ना, आपने जल भी नहीं पिया होगा, खाना तो छोड़ ही दो, और अभी एकादशी का व्रत आप कल 10 बजे तक करेंगे पूरा निर्जला व्रत, और 10 बजे का समय आएगा कि अभी आपको व्रत का पारण करना है, सारी तैयारी रेडी है, 4 प्रकार के जूस तैयार है, ये सब कुछ रेडी है पूरा। हाँ, उसके बाद में आपको मेन्यू बताया गया है कि उसके बाद में शाम को क्या मेन्यू बनेगा, आज उपवास के पारण में शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो सुबह नहीं खाना है, लेकिन शाम को क्या करने वाला है वो भी आपको पता है, और आप अभी भूखा पारण कर रहे हैं और सब प्रकार का इंतजाम है, फिर भी आप उसको पा नहीं सकते हैं, वो दूर है आपसे, आपके अधिकार में नहीं है, नहीं मिलने वाला आपको। तो जब आपको नहीं पीना है तो एक प्रकार का दुख है, लेकिन जब छोड़ने का समय आया है और सब कुछ सामने दिख रहा है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है वो, तो आपको दुख ज्यादा होगा कम होगा? आज का दिन में दुख नहीं होगा आपको, आपको मालूम है अभी तक कल 10 बजे तक करना है, आप मन की तैयारी है आपकी, एक दुख भोग रहे हैं आप, कष्ट भोग रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, थोड़ा झेल रहे हैं आप कष्ट, लेकिन आपको पता है कि अभी नहीं पीना है पानी। लेकिन जब आपको पता है पानी पीना है और पानी सामने भी है और रंग बिरंगी पानी भी सामने है, और अभी आपको वो नहीं मिलने वाला है, किसी ने लात मारा और जमीन पे गिर गया सब, हो सकता है ना ऐसे, हमारी आशा है कि ऐसा नहीं हो लेकिन हो सकता है, तो कितना आपको दुख होगा, अरे अभी तो मैं उसको पीने वाला था, अरे इतना पंच पकवान बना के रखा, अभी मैं उसको खाने वाला था, लेकिन उसमें सब धूल गिर गई, सब हवा का झोंका आया और सब मट्टी गिर गई उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि ज्यादा दुख होगा आपको, आपके सामने अन्न है लेकिन आप उसको पा नहीं सकते हो, भूख पर्याप्त मात्रा में है, अति तीव्र मात्रा में है लेकिन आप खा नहीं सकते हो। उसी प्रकार से जब भगवान नहीं थे तभी एक प्रकार का दुख था, अभी भगवान है लेकिन वो हमारे जो मन में है वो नहीं है, दूसरे है वो भगवान। क्या फर्क था उनके अंदर, वो माधुर्य वाले भगवान नहीं है, वो ऐश्वर्य वाले भगवान है, ऐश्वर्य वाले भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे कि पापा अगर ऑफिस में समझो वो जवान है आर्मी में, तो घर में आप कंधे पर कूदते हो उसके, वो घोड़ा बन जाते हैं, आप उनको चढ़ते हो, कुछ भी करते रहते हो, अचानक पापा को आप ऑफिस में मिलते हो वर्दी में पूरा मशीन गन लेकर पूरा युद्ध की तैयारी में, तो बेटा पापा के साथ रिश्ता नहीं कर सकते उस समय, अरे ये तो मेरे पापा, अरे तो अलग ही दिखते हैं एकदम ऑफिशियल, कोई वहाँ मजाक नहीं, कुछ खेलना मिलना कुछ नहीं, घोड़ा बनना नहीं कुछ नहीं, उधर बैठे रहो, शाम को मिलेंगे गार्डन में। तो पापा को मिलने के बाद ऐसा लगेगा नहीं पापा को मिला मैं, ऐसा लगेगा नहीं उसको, उसको लगा नहीं मिला पापा को मैं, पापा को देखा लेकिन पापा को मिल नहीं सका मैं, वो कुछ अलग ही थे। घर पे आएंगे वर्दी उतार कर फिर घोड़ा बनेंगे तो उसको लगेगा हाँ पापा मिले मुझे, अभी अभी पापा को मिलने का सही आनंद आया। उसी प्रकार से उनको भगवान इतने साल के बाद दिखे तो सुख होने के बदले में उनको अति तीव्र अति अति तीव्र करोड़ों गुना अति तीव्र दुख हुआ उनको, और अपने आप को उन्होंने असहाय महसूस किया। उस समय वो मन में ही बोलने लगे भगवान से, इतने दूर थे भगवान उनसे, लगता था कि जाके उनको गले मिलना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर वहां पर है, इतने सैनिक है बीच में, इतनी रानियां है, इतना ऐसा क्या कहते हैं उसको ऑफिशियल एटमॉस्फेयर, एकदम कायदे से सब कुछ, ऐसे मिल नहीं सकते उनको। तो मन ही मन बोलने लगे, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्यों ये भेष पहन के रखा है, इतना सारी सेना आगे पीछे डोल रहे, क्यों करके रखा है ऐसे, छोड़ो सब कुछ, ये मुकुट उतार दो, वस्त्र उतार दो, अलंकार उतार दो, रथ छोड़ो, पैर ये चप्पल भी उतार दो, जैसे नंगे पैर घूमते थे वन में वैसे आओ, मोरपंख पहनो, वनमाला पहनो, माखन खाओ, फल खाओ, गौचारण करो, चलो वृंदावन चलते हैं। ये क्यों भेष बना के रखा है, इसमें क्या है, हमने जो आनंद लिया था आपके साथ में, जो आपको आनंद दिया था, वो किधर है यहाँ पर, सब ऑफिशियल है, सब पत्नियां अलंकार पहने हुई, सब सलाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर, सब लोग आपको हरा कर आपके कंधे पर बैठकर आपको, आप उनको क्या कहते हैं, दे यूज टू गिव पनिशमेंट टू यू, अगर कोई गेम हार गए, अगर आप हार गए तो आप उनको कंधे पर लेकर सजा भुगते थे उनकी, घुमाने की उनको, कितना आनंद था उसके अंदर, माखन चोरी करके खाते थे, कितना आनंद आप लेते थे उसके अंदर, गाय के गोबर में गोमूत्र में घुमा करते थे, पेट के बल में स्केटिंग करते थे, कितने अच्छे दिन थे वो, यहाँ क्या कर रहे हो आप, ऐसे मन ही मन में तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, मिल नहीं पा रहे उनसे। तो क्या करते हैं फिर, कहते हैं उनका विरह का भाव उस समय इतना उत्कट हो गया, इतना उत्कट हो गया, वो पागल जैसी हो गई, ऐसे भ्रमित हो गई, भाव विभोर हो गई पूरी, और मन में ही उन्होंने उनको पहले मन में लिया ना, हृदय के अंदर उनको लिया, रथ में बैठे हुए, रथ में खड़े हैं, वो रथ को मन में हृदय में उन्होंने रस्सी लगाई कसके, और मन में उनको उन्होंने कुरुक्षेत्र से वृंदावन में खींचा, वो रथ यात्रा है, वो ओरिजिनल रथ यात्रा है, सबसे मूल रथ यात्रा, बीज रूपी रथ यात्रा वो है जो गोपियों के हृदय में संपन्न हुई थी, उन्होंने अपने हृदय में उनको कुरुक्षेत्र से, उनका हृदय जो वृंदावन जैसा था वहां पर खींच के लाया उनको, ब्रज में लाया उनको, भाव से खींचकर, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था वो, हृदय में हुआ था। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र में जाकर मरना चाहूंगा, क्योंकि भगवान की जो परम प्रिय सखियां थी गोपियां, वो सबसे असहाय अवस्था में कुरुक्षेत्र में थी, और मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ, सहायता करते करते शरीर छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुरुक्षेत्र में मरना चाहता हूँ, ये उनका भाव था। ऐसी उत्कट चीजें, घटनाएं, भावनाएं कृष्ण भावना के अंदर सम्मिलित हैं, जो हमें और आपको भी उपलब्ध हो सकती हैं, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की आसक्ति, इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार का सेवा भाव, इस प्रकार का अटैचमेंट भगवान से जितना गोपियों को था, ये सब हमें भी मिल सकता है, ये कृष्ण भावना का चमत्कार है। और वो अज्ञान भी गौरवशाली है कि ये भगवान है पता नहीं मुझे, लेकिन उन पर इतना प्रेम है जितना भगवान पर भी प्रेम नहीं करते, जिनको भगवान समझते हैं, क्योंकि सबके घर में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, नंद बाबा के घर पे होती थी, नरसिंह भगवान की होती थी, अदक्षत भगवान की होती थी, शालिग्राम की होती थी, और कृष्ण उनका बालक था, जो शालिग्राम का, नरसिंह भगवान और सबका स्रोत वही है, लेकिन वो बालक बन के आया, वो पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन वो सब घर में भगवान विष्णु के अलग रूप की पूजा करते थे। उन पर भी उतना प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, उतना प्रेम भक्ति इस बालक पे ऊपर थी उनकी। तो वो क्या कहते हैं ना, ऐश्वर्य से परे जाकर, माधुर्य में जाकर जब प्रेम होता है ना, तो वो श्रेष्ठतम होता है। एक जानकारी है आपको, ये भगवान है और भगवान से आप प्रेम करते हैं कि हाँ भगवान है, अर्जुन को पता था, कुंती को पता था कि ये भगवान है, और वो उनको प्रेम था कि मेरा भगवान है, लेकिन मेरा कजिन है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, चचेरा भाई है, अर्जुन का भी सखा का प्रेम था, जानते थे भगवान है करके, लेकिन ब्रजवासी जो सखा थे उनके, उनको पता नहीं था। तो उनका प्रेम जो था वो अर्जुन का भी श्रेष्ठ था, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ वो सखाओं का प्रेम था जो वृंदावन में थे। तो रानियों का भगवान पर प्रेम था, वो तो उनके ऑफिशियल पति थे, लेकिन जो गोपियों का प्रेम था वो रानियों से भी कई हजारों गुना ज्यादा था। ऐसे प्रेम करने वाले गोपियों ने ये रथ यात्रा का घटना हृदय में संपन्न किया। उसी उपलक्ष्य में आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। हमको और आपको रथ खींचने का समय आएगा ना, तो उसी भाव से खींचना उस रथ को कि भगवान को आप हृदय में खींच रहे हो, अपने हृदय को वृंदावन बना रहे हो और वृंदावन में उनको खींच कर लेके आ रहे हो कि भगवान यहाँ निवास करो। इसलिए कहते रथ यात्रा जब होती ना तो केवल भगदौड़ मचाना, भागना और झकपक ड्रेस पहनना, झकपक बाल घुमा के जाना और ऐसे कुछ ना कुछ व्यवहार करना रास्ते पे, वो रथ यात्रा नहीं है। रथ यात्रा जो है वो भगवान को दिल भर के निहारने के लिए है, नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय तक खींचने के लिए रथ यात्रा है। रथारूढ़ भगवान जो है उनको प्रेम से देखना है, निहारना है, उनको देखकर हाथ जोड़ना है, उनको देखकर रस्ते पर दंडवत करना है, उनको रथ में बैठे हुए भगवान को फिर रस्सी खींचना है, रस्सी को स्पर्श करना है और खींचना है, और उनको खींचना है बार बार हृदय में। राधा रानी क्या बोलती थी उनको, अरे भगवान आप कहाँ हो, इधर क्यों हो, चलो वृंदावन, कितने दिनों बाद दर्शन दिया आपने, वो भी इस रूप में दर्शन दे रहे हो, चलो गाय चराने के लिए चलो, चलो माखन चुराने के लिए, चलो होली खेलने के लिए, चलो रास रचाने के लिए, इधर क्या है, ना रास है, ना होली है, ना गौचारण है, ना मक्खन है, ना कुछ नहीं, कैसे आपको आनंद आ रहा है यहाँ पर, क्या सब भूल गए आप वृंदावन का आनंद जो हर दिन हर क्षण आप लिया करते थे, इतनी लीला आपने किया वहां पर, इतना हमको आनंद दिया, इतना आपने आनंद लिया, क्या सबसे आप उबक गए हो अभी, आपको उसमें कोई रुचि नहीं बची, आपको मैया की याद नहीं आती, आप गोपियों की याद नहीं आती, ग्वाल बालों की याद नहीं आती, गायों की याद नहीं आती, सब आपको याद कर रहे हैं, आप यहां पर क्या कर रहे हो। इतना उत्कट अनुभव किया उन्होंने विरह का, उनके सामने दर्शन करते हुए भी। तो जिस भाव से उन्होंने उनको खींचा उसी भाव से हमको रथ को खींचना चाहिए। अगर वो आपके मन में भाव है तो आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के पैर पर लात नहीं मारेंगे, कूद कूद कर वो केला पकड़ने लगे जंप नहीं मारेंगे आप। अगर आपका मन और हृदय इतना भावना से ओतप्रोत हो गया है, लथपथ हो गया है, भावना से गीला हो गया है, तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे वहां पर। आपके आंखों से आंखों में आंसू रहेंगे और वो आंसू लेकर भगवान को देखेंगे और रथ को खींचेंगे आप, और सब लोगों को आगे करेंगे, आप भी खींचिए, आप भी खींचिए, आओ आप भी खींचिए, आओ इसका लाभ लीजिए आप। क्योंकि जो व्यक्ति इस भाव से भगवान को प्रणाम करेगा, दर्शन करेगा, दंडवत करेगा, रथ को स्पर्श करेगा, रथ की रस्सी को पकड़कर रथ को खींचेगा, वो इस दुनिया के जन्म के बाद में दोबारा जन्म नहीं लेगा, अपने आप को वैकुंठ में पाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा दुख भोगने के लिए यहाँ पर। क्योंकि रथ यात्रा के सीन जो आपने देखा है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बात, बार बार बता रहा हूँ, रथ यात्रा में बैठे, रथ में बैठे हुए भगवान को प्रेम से हृदय पूर्वक एकाग्रता से निहारना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सीन आपके हृदय पटल पर अगर फिट हो गया, बस गया आपके हृदय में, वो सीन जो आपको आंख बंद करने पर भी याद आएगा, अरे भगवान रथ में कितने क्या दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, उनका श्रृंगार, उनका दर्शन, अगर आपको आंख बंद करने पर भी याद आएगा, साल भर भी याद आते रहेगा, जगन्नाथपुरी गए वहां का याद आते रहेगा, तो अगर हृदय पटल पे आपके स्मृति पटल पे अगर वो फिक्स हो गया तो हमारे मृत्यु के समय उसी सीन पर आपका दुनिया का जीवन का वीडियो रुक जाएगा। क्योंकि मृत्यु के समय हमारे जीवन का वीडियो भगवान दिखाते हैं हमको, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या कितना भक्ति किया, सब आपको हिसाब किताब दे देते हैं, आप भूल गए वो आपको याद दिला देते हैं आपको। लेकिन अगर आपने रथ यात्रा अटेंड किया हो और भगवान को प्रेम से निहारा हो तो उसी दृश्य पर, उसी सीन पर वो फिल्म अटक जाती है और उसी को देखते हुए आप शरीर छोड़ते हो। ये भगवान की अरेंजमेंट है, ये वीडियो आप अरेंज नहीं कर सकते, वो उनके हाथ में होता है, वो आपको दिखाएंगे और वही उस दृश्य पर वीडियो को रोक देंगे और रथ पर बैठे हुए भगवान का दर्शन करते हुए आप शरीर छोड़ देंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब अंतकाल में भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ही मन में दर्शन करेंगे तो उन्हीं को प्राप्त करेंगे। तो वो जो रथ यात्रा हुई थी वो रथ यात्रा आपके जीवन में हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चाहना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। भगवान तो सब इच्छा पूर्ण करने के लिए बैठे हैं, आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे पूर्ण आपके? इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति की व्याख्या एक भी की गई है, इच्छाओं को बदलकर कृष्ण के लिए बनाना, यही कृष्ण भावना है, यही कृष्ण भक्ति है। अपनी जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं भगवान को अलग बनाकर रखी हुई है, अपने इंद्रिय भोग के लिए अपनी इच्छाओं को हमने बना के रखा है, उनको छोड़कर अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से जोड़ना, कन्वर्ट करना उनको, उसका परिवर्तन करना, और वो परिवर्तन की हुई इच्छाएं हैं उसकी परवरिश करना उसके बाद में, यही कृष्ण भक्ति है। आपकी इच्छा क्या है उससे मेरी इच्छा जोड़ रहा हूं, मेरी इच्छा से आप मत जुड़ना, आपकी इच्छा से मैं अपने आप को जोड़ रहा हूं, मेरी इच्छाओं को आपकी इच्छा से एक रूप कर रहा हूं। तो अगर आप ये चाहते हो तो भगवान जितना आप उनको मिलने के लिए व्याकुल हो उससे करोड़ों गुना व्याकुल वो आपको मिलने के लिए है, लेकिन आपको उनकी मिलने की इच्छा होनी चाहिए, तब वो अपनी व्याकुलता प्रकट करेंगे और आपको मिलने को भाग के आएंगे। इसलिए इस जीवन के इस मूल्यवान भाग्य को आप गंवाना नहीं व्यर्थ कभी भी। ये जीवन का जो भाग्य है ना वो परम 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 भाग्य है कि इस जीवन में आपको भगवान का संपर्क मिला है जो देवताओं को भी नहीं मिलता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कैसे देवताओं को नहीं मिलता है। वो ब्रह्मा जी एक बार भगवान का महाप्रसाद खाने के लिए ब्रज में आए अभिलाषा लेकर, और देखा उन्होंने कि वो भगवान जमुना जी के पास बैठते हैं, गोलाकार कमलाकार बैठते हैं, सबको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और खाना पीना हो गया तो जूठा हाथ धोने के लिए जमुना जी में जाते हैं, और जमुना जी में हाथ धो लेते हैं तो हाथ में तो कुछ ना कुछ लगा रहता है ना, अभी हम लोग खाना खाते हैं जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहता है ना उसमें, हाथ में जो हाथ से पानी निकलता है वो तो पीला हरा रंग का होता है ना, वो उसमें दाल वगैरह का निकलती है, उसमें से कुछ कण भी कभी निकलता है, कभी कुल्ला करते तो मुँह से भी कुछ गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ गिरेगा ना भगवान के मुंह से हाथ से, तो मैं मछली बनूंगा और मछली बनकर इंतजार करूंगा, जब आएंगे हाथ धोएंगे तुरंत खा लूंगा उसके हाथ से निकला हुआ है। तो भगवान उठे सब लोग खाना खाने के बाद में, और जमुना जी में हाथ धोने गए तो भगवान ने देखा, अरे हाँ ब्रह्मा जी मछली बनकर घूम रहे हैं, तो दोना लिया, दोने में पानी लिया और जमीन में जाके हाथ धोया, और मछली को नहीं मिला। वो ब्रह्मा होने पर भी उनको महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई, और वही वो ग्वाल बाल जो है ना भगवान के मुंह से खींचकर भी खा रहे हैं और भगवान भी उनके मुंह से खींचकर खा रहे हैं। तो सुखदेव जी को परीक्षित महाराज और सुनने वाले सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पुण्य था उनका, क्या किया था उन्होंने कि ऐसा परम भाग्य मिला उनको कि भगवान से मुंह से जूठा निकालकर खा रहे हो, इतना भाग्य कैसे मिला उनको? इसका मतलब क्या हुआ? वो भाग्य देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है जो हमको और आपको उपलब्ध है। हम आए दिन भगवान का महाप्रसाद खाते रहते हैं, वृंदावन में जाकर भी खाते हैं, प्राचीन प्राचीन मूर्तियों का महाप्रसाद भी खाते हैं, स्वतः स्वयं प्रकट स्वयंभू भगवान की मूर्तियां भी वहां पर है, उनका भी प्रसाद खाया हमने, लेकिन देवताओं को प्राप्त नहीं हो। इसलिए देवताओं से भी हमारा जन्म जो है वो श्रेष्ठ है। आइए सब मिलकर इस भाग्य का पहले ज्ञान प्राप्त करें, और भाग्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको बनाए रखें अपने मन में एप्रिसिएशन, हाँ कि हमें कितना भाग्य मिला है। वो अगर आपके मन में है ना फिर सब द्वेष काम वासना धन की लालसा सब भाग जाएगी आपके मन से। अगर आपको ये एप्रिसिएशन मन में है कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिली है और मैं इससे कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ, तो सब द्वेष वे सब भाग जाएगा आपके मन से, सब झगड़े अपने आप मिट जाएंगे, वैकुंठ का वातावरण अपने आप निर्माण हो जाएगा, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस भाग्य को समझो और अपने जीवन को धन्य करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।